नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। वुमन कोड अलीसा वित्ती की महिला हार्मोन स्वास्थ्य पर केंद्रित लोकप्रिय समग्र स्वास्थ्य पुस्तक है। इसका मूल उद्देश्य मासिक चक्र, पोषण, जीवन शैली और आम हार्मोन संबंधी लक्षणों के बीच संबंध को सरल भाषा में समझाना है। वित्ती अपने पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अनुभव और कार्यात्मक पोषण के दृष्टिकोण से तर्क देती हैं कि अनियमित पीरियड्स, तीव्र प्रीमेंस्ट्रुअल लक्षण, त्वचा समस्याएं, थकान, कामेच्छा में कमी और प्रजनन संबंधी कठिनाइयों को केवल अलग अलग समस्याओं की तरह नहीं देखना चाहिए। पुस्तक इन्हें रक्त शर्करा, तनाव प्रतिक्रिया, पाचन व निष्कासन तथा प्रजनन हार्मोनों से जुड़ी व्यापक व्यवस्था के संकेतों के रूप में पढ़ती है। इसका व्यावहारिक ढांचा पांच चरणों वाले कार्यक्रम और चक्र के चार चरणों के अनुरूप दिनचर्या बनाने पर आधारित है। यह चिकित्सकीय निदान या उपचार का विकल्प नहीं है, विशेषकर गंभीर दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, बांझपन या अंतःस्रावी रोगों में। फिर भी अपने शरीर के पैटर्न दर्ज करने और भोजन व दिनचर्या पर सोच समझकर प्रयोग करने के लिए यह एक उपयोगी आरंभिक मार्गदर्शिका है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले लक्षणों को अलग समस्या नहीं, हार्मोन तंत्र के संकेत के रूप में पढ़ना वुमन कोड का पहला महत्वपूर्ण योगदान इसकी लक्षण आधारित सोच है। पुस्तक कहती है कि पीरियड का अनियमित होना, मुहासे, ऊर्जा का गिरना, मीठे की तीव्र इच्छा, मनोदशा में बदलाव या कम काम इच्छा को केवल सतही असुविधा मानकर दबाना पर्याप्त नहीं है। इनके पीछे रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव, दीर्घकालिक तनाव, नींद की कमी, पाचन या निष्कासन की गड़बड़ी और प्रजनन हार्मोनों के असंतुलित संकेत जैसे परस्पर जुड़े कारक हो सकते हैं। यह दृष्टि उपयोगी है क्योंकि यह पाठक को एक ही लक्षण के लिए बार बार त्वरित उपाय खोजने के बजाय अपने पूरे स्वास्थ्य पैटर्न को देखने के लिए प्रेरित करती है। वित्ती भोजन, उत्पादों, तनाव और चक्र संबंधी जानकारी दर्ज करने पर जोर देती है ताकि व्यक्ति अपने ट्रिगर और दोहराते क्रम पहचान सके। पुस्तक का पांच चरणों वाला ढांचा इसी व्यापक जांच से आगे बढ़ता है। इसमें विषैले रसायनों और भड़काऊ भोजन के संभावित प्रभाव घटाना, फिर शरीर की जिन प्रमुख प्रणालियों को सहायता चाहिए उन पर ध्यान देना शामिल है। हालांकि हर लक्षण का कारण हार्मोन नहीं होता, थायराइड विकार, एंडोमेट्रियोसिस, एनीमिया, संक्रमण और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां भी समान संकेत दे सकती हैं। इसलिए पुस्तक की स्वनिरीक्षण पद्धति को चिकित्सकीय जांच के साथ जोड़ना अधिक जिम्मेदार उपयोग है। दूसरा, चार चरणों वाला मासिक चक्र और साइकिल सिंकिंग की अवधारणा। पुस्तक मासिक चक्र को केवल रक्तस्राव के दिनों तक सीमित नहीं करती, वह इसे फॉलिकुलर, ओविलेटरी, ल्यूटल और मेंस्ट्रुअल इन चार चरणों वाली जैविक लय के रूप में प्रस्तुत करती है। इन चरणों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के स्तर बदलते हैं। वित्ती का साइकिल सिंकिंग विचार यह है कि भोजन, व्यायाम, आराम और काम की योजना में इन बदलावों को ध्यान में रखा जाए। उदाहरण के लिए पुस्तक अलग चरणों में ऊर्जा, भूख, सामाजिक सहजता और विश्राम की जरूरत बदलने की संभावना पर ध्यान दिलाती है। इसका व्यावहारिक लाभ यह हो सकता है कि पाठक अपने चक्र की तारीखों, नींद, दर्द, भूख और मनोदशा का रिकॉर्ड रखकर ऐसे पैटर्न पहचाने जो सामान्य स्वास्थ्य सलाह में छूट जाते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका चक्र नियमित है और जो अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को बेहतर समझना चाहते हैं, लेकिन इसे कठोर नियम नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति की चक्र अवधि, लक्षण, कामकाजी परिस्थितियां और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है। हार्मोन परिवर्तन से सभी भावनाओं या कार्यक्षमता की निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती, अतः साइकिल सिंकिंग को लचीली योजना और आत्म अवलोकन की विधि मानना अधिक उचित है, न कि सार्वभौमिक जैविक निर्देश। तीसरा, भोजन, रक्त शर्करा और पोषण को हार्मोन समर्थन का आधार मानना। वुमन कोड में पोषण को हार्मोन स्वास्थ्य का मुख्य व्यवहारिक साधन माना गया है। वित्ती भोजन को केवल कैलोरी या वजन के प्रश्न तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे रक्त शर्करा, ऊर्जा, सूजन, पाचन और हार्मोन निर्माण से जोड़ती हैं। पुस्तक पर्याप्त फाइबर, विटामिन बी समूह, मैग्नीशियम और संतुलित कम प्रसंस्कृत भोजन के महत्व पर जोर देती है। तर्क यह है कि अत्यधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, अनियमित भोजन या लगातार रक्त शर्करा का उतार चढ़ाव भूख, थकान और तनाव प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिनका हार्मोन संबंधी लक्षणों से संबंध हो सकता है। पुस्तक चक्र के अलग चरणों में बदलती भूख और ऊर्जा जरूरतों पर ध्यान देने को भी कहती है, ताकि भोजन को दंड या नियंत्रण के बजाय शरीर की जरूरत के उत्तर की तरह देखा जा सके। यह दृष्टि खासकर पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसे संदर्भों में रक्त, शर्करा पर ध्यान दिलाने के कारण प्रासंगिक है। फिर भी पुस्तक की कुछ निषेधात्मक भोजन सलाह, विशेषकर डेयरी या ग्लूटेन से व्यापक दूरी, हर व्यक्ति के लिए समान रूप से प्रमाणित नहीं है। असहिष्णुता, एलर्जी और चिकित्सकीय जरूरतों के बिना बड़े खाद्य समूह हटाने से पोषण की कमी या अनावश्यक चिंता हो सकती है। सबसे संतुलित निष्कर्ष यह है कि इसके भोजन सिद्धांतों को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, सांस्कृतिक आहार और पंजीकृत पोषण विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह के साथ अपनाया जाए। चौथा, पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ, तनाव और निष्कासन को हार्मोन चर्चा में शामिल करना। इस पुस्तक की समग्रता केवल खाने की सूची तक सीमित नहीं है। वित्त, घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, भोजन तथा पर्यावरण में मौजूद कुछ रसायनों के संपर्क को कम करने की बात करती है। साथ ही वह तनाव, नींद और शरीर की निष्कासन प्रक्रिया को अंतःस्रावी स्वास्थ्य की चर्चा में रखती हैं। इसका केंद्रीय विचार है कि हार्मोन अलगाव में काम नहीं करते। लगातार तनाव शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को सक्रिय रख सकता है, खराब नींद भूख और ऊर्जा नियंत्रण को बाधित कर सकती है और पाचन संबंधी परेशानी व्यक्ति की समग्र भलाई को प्रभावित करती है। इसीलिए पुस्तक जीवन शैली में छोटे लगातार बदलावों को दवा के समानांतर महत्वपूर्ण मानती है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है उत्पादों के घटक पढ़ना, अनावश्यक सुगंधित या कठोर रसायनों का उपयोग घटाना, नियमित नींद को प्राथमिकता देना और मल त्याग व पाचन के पैटर्न पर ध्यान देना। यह ढांचा पाठक को स्वास्थ्य के ऐसे कारकों पर नियंत्रण देता है जिनकी अक्सर अनदेखी होती है। फिर भी विषाक्त पदार्थों पर चर्चा में सावधानी जरूरी है। किसी एक उत्पाद या पदार्थ को जटिल हार्मोन समस्या का निश्चित कारण मान लेना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं। जोखिम संपर्क की मात्रा अवधि और व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। पुस्तक से मिलने वाला अधिक ठोस सबक यह है कि कम जोखिम वाले जीवन शैली सुधार अपनाए जाए मगर भय आधारित निर्णयों और सिद्ध उपचारों को छोड़ने से बचा जाए। अंत में प्रजनन क्षमता और महिला स्वास्थ्य में स्वायत्तता पर सीमित दावों की जरूरत, वुमन कोड का एक प्रमुख आकर्षण यह है कि यह प्रजनन क्षमता, पीरियड्स और यौन स्वास्थ्य को शर्म या रहस्य की बजाय समझने योग्य स्वास्थ्य विषयों के रूप में रखती है। वित्ती का कार्यक्रम पाठक को चक्र की लंबाई, ओव्यूलेशन के संकेत, दर्द, रक्तस्राव, त्वचा और ऊर्जा में बदलाव पर ध्यान देने के लिए कहता है। गर्भधारण की कोशिश कर रही महिलाओं के लिए यह जागरूकता उपयोगी हो सकती है क्योंकि चक्र का रिकॉर्ड चिकित्सकीय बातचीत में भी अधिक स्पष्ट जानकारी दे सकता है। पुस्तक यह भी चुनौती देती है कि हर हार्मोन संबंधी परेशानी का एकमात्र उत्तर दवाएं या अवसादरोधी औषधियां हों। इसका मूल्य इस बात में है कि पोषण, नींद, तनाव प्रबंधन और नियमित स्वास्थ्य अवलोकन को सक्रिय भूमिका दी जाती है, लेकिन यही क्षेत्र पुस्तक की सीमा भी दिखाता है। प्राकृतिक उपायों से गर्भधारण या सहायक प्रजनन तकनीकों की सफलता के व्यापक दावों को व्यक्तिगत अनुभव और चिकित्सा प्रमाण के बीच अंतर रखकर देखना चाहिए। बांझपन के कई कारण हो सकते हैं जिनमें उम्र, फेलोपियन ट्यूब, शुक्राणु गुणवत्ता, एंडोमेट्रियोसिस और अन्य स्थितियां शामिल हैं। इसी तरह हार्मोनल गर्भ निरोध, प्रजनन उपचार या मानसिक स्वास्थ्य की दवा को बिना योग्य चिकित्सक के अचानक बदलना सुरक्षित नहीं है। पुस्तक का सबसे जिम्मेदार उपयोग स्वायत्तता बढ़ाने में है, चिकित्सा देखभाल का स्थान लेने में नहीं। निष्कर्ष में, वुमन कोड उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो मासिक चक्र, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसे हार्मोन संबंधी संदर्भों, प्रीमेंस्ट्रुअल लक्षणों, ऊर्जा में उतार चढ़ाव या प्रजनन स्वास्थ्य को भोजन और दिनचर्या के नजरिए से समझना चाहते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों को आकर्षित करेगी जिन्हें पारंपरिक स्वास्थ्य सलाह बहुत सामान्य लगती है और जो अपने लक्षणों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखकर व्यक्तिगत पैटर्न पहचानना चाहते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ इसकी भाषा और संगठन में है। यह जटिल अंतःस्रावी विषयों को चक्र, रक्त, शर्करा, तनाव, पाचन और पर्यावरणीय संपर्क जैसे रोजमर्रा के पहलुओं से जोड़ती है। दूसरे सामान्य पोषण या महिला स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की तुलना में इसकी विशिष्टता साइकिल सिंकिंग और 5 चरणों वाले ढांचे में है। यह महिला जीव विज्ञान को स्थिर मानने के बजाय बदलती लय के रूप में देखती है। फिर भी इसे आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना जरूरी है। सभी मूड परिवर्तन हार्मोन से तय नहीं होते और डेयरी, ग्लूटेन या अन्य खाद्य पदार्थों पर इसकी सलाह सभी के लिए लागू नहीं होती। गंभीर, नए या लगातार लक्षणों में चिकित्सकीय मूल्यांकन अनिवार्य है। सर्वोत्तम रूप में यह पुस्तक निदान पुस्तिका नहीं बल्कि बेहतर प्रश्न पूछने, उपयोगी स्वास्थ्य डेटा इकट्ठा करने और कम जोखिम वाले जीवन शैली बदलावों को आजमाने का ढांचा है। इसकी ताकत पाठक को अपने शरीर के संकेतों के प्रति अधिक साक्षर बनाना है, जबकि इसकी सीमाओं को समझना उस साक्षरता का आवश्यक हिस्सा है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं अलीसा वित्ती, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।